अब इस छुपी दोस्ती को आप देखिए, पहले तो ये चीज़ें ढकी छुपी होती थी हमारी सोसाइटी की। मैं नॉन मुस्लिम कल्चर को बिल्कुल डिस्कस नहीं करती, क्योंकि वो तो आपको हंस के दिखाएंगे, देखा हम कौन सी छुपी करते हैं, हम तो दिखा क्या करते हैं। बाद लोग इससे भी कहते हैं कि हाँ दोस्ती करो लेकिन छुपाओ नहीं, तो छुपी दोस्ती से जो चीज़ है वो हम सबको अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं बात करूंगी अपने कल्चर की। हमारे यहाँ आप देखिए कि अंदर खाते पहले तो बहुत खिचड़ियाँ पकती थी, कज़न्स के आपस में ताल्लुक़ हैं, शादियों पे वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रही है, वो गुनगुना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और कोई कभी किसी छत के ऊपर देखे के बातें करते, लेकिन वो बेचारे वो उतना ही कर सकते थे जो उस वक्त तक उनके हाथ में था। लेकिन इस वक्त बाज़ दफ़ा इस चीज़ को इस तरह से लीगलाइज़ किया गया, एक मतलब माँ थी तो उन्होंने ख़ास तौर पर इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी की कि जब कभी कोई क्लास हो या आप ये मौजू करें तो प्लीज़ इस मौजू को बहुत डिस्कस करें, ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा। और वो क्या कि पहले लड़के लड़कियों की गलती होती थी इन मामलात में, अब माँ बाप गलती कराते हैं। मैंने कहा क्या बात हुई, कैसे हुई? कहते हैं कि अब लड़की लड़का, चले एक वो लड़की लड़का जिनको कुछ नहीं पता कल क्या होना है, देखिए वो तो एक अंधेर है ना। अगर बिलफर्ज जिस लड़के से लड़की का ताल्लुक हो रहा है कल शादी हो जाती है, तो इस पहली छुपी दोस्ती का नुकसान क्या है? कभी भी वो लड़का उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा तुम वही हो ना जो मेरे साथ आधी रात को भी बैठ जाती थी, और मेरे साथ माँ बाप को झूठ बोल के तुम चली जाती थी, उनको पता चलता था कॉलेज में, और तुम मेरे साथ ही। कभी वो लड़की उस लड़के का ट्रस्ट नहीं ले सकेगी। और अगर बिलफर्ज वो लड़के से शादी नहीं हुई तो सारी ज़िंदगी का गम, बाद में जितना भी अच्छा शौहर मिल गया ना, तो वो हर वक्त इसी को डिस्कस करेगी, वो क्यों नहीं है और उससे क्यों नहीं, दोनों सूरतों में खसारा है ना। लेकिन जो मसला बिगड़ता है वो क्या है, जिसको फियोंसिस कह लें आप, आज के दौर में इस चीज़ को इतना लीगल किया जा रहा है और इतना स्लोली ये हो रहा है हमारे माशरों में, कि अब माँ बाप मंगनी के बाद खुद लड़कियों को फ़ोन देते हैं लगवा के, और उन्हें कहते हैं बस इससे तुम अब जो बात कर लो। अब आप सोचिए कि जितने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ते गए, हुआ क्या, एक लड़की लड़का जिनको आप दोनों ने इंगेज कर दिया, ठीक है बात निकल गई खानदान में, घरों में, बाहर की है, दोस्त है, व्हाट्सो एवर, कि इस लड़की और लड़के की शादी होनी है। इसके बाद की जो बातें हैं ना, ये है आज के दौर की मुत्तखिज़ात व ख़दान, और ये अच्छे घरों की मुत्तखिज़ात हैं, ये उनकी नहीं है जो बेचारे दूर पड़े, उनको तो परवाह नहीं। इसमें आप ज़रा सोचिए, एक लड़की लड़का जिसकी उम्र चले 20 और 22 साल ही होगी, अमूमन 20 साल की उम्र में लड़की की मंगनी होती है, लड़का 22 है, आप ज़रा अपना 20 साल का वक्त याद करें कि आपकी सोचें उस वक्त क्या थी, उनकी उम्र देखिए, उनके जज्बात देखिए, उनके हार्मोनल चेंजेस को देखिए, वो क्या बातें करेंगे। आधी आधी रात को मैसेजेस पास हो रहे हैं, टेक्सटिंग हो रही है, अगर चैटिंग हो रही है, वो क्या बातें करेंगे। देखिए शौहर बीवी दूर होते हैं ना, घंटा भी बात करेंगे वो 100 मसले डिस्कस करेंगे ना, पानी नहीं, बिजली नहीं, वो किधर, खाना किधर, वो किधर, 100 बातें होंगी। चले भाई बहन है, उनका कोई मसला है, वो भाई बहन है कितनी को लंबी बात कर लेते हैं, जरा आप खुद बताएं, आप अपने सगे भाइयों से कब लंबी बात आपने की होगी? मेरा ले एक दफ़ा अगर बात कोई कर ले 10-15 मिनट तो महीनों ख्याल ही नहीं होता, क्या हाल है भाई का, क्या हाल है भाभी, कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है, मौसम है, फिर याद ही नहीं आता बात क्या करें। हाँ चले आप अपने मामू से कितनी को लंबी बात करेंगे, मान लिए। आप ज़रा सोचें कि जहाँ 24 आवर्स में से चले अगर हर रोज़ 1 घंटा भी कोई बात करता है, वो बात करेंगे गरीब क्या? आप सोचें ज़रा, आप अपने आप को सोचें कि आप यंग लड़की हैं, अब एक लड़का जिससे आपकी मुस्तकबिल में शादी होने वाली है, पहली बात है किसको पता है होगी कि नहीं होगी, कहानी आपको पीछे सुनाई थी, शादी से 2 दिन पहले मंगनी टूट गई थी, चले हो भी जाएगी, बातें क्या करेंगे वो लोग? क्या शैतान को हवा देने वाली बात नहीं है? और शैतान तो उनको इस तरीके से लाएगा कि देखो होगा क्या, फिर ऐसे है, ये करेंगे, फिर प्लान, वो कहते नहीं ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये पहले सेट करें। आज वेस्ट का यही मामला हुआ, वो पहले हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, और नतीजा क्या होता है कि मंगेतर के तौर पे तो वो बहुत खुश था, शादी हुई तो पता चला गड़बड़ हुई। देखिए जब आप ऐसी इजाज़त देते हैं ना अपने बेटों को और बेटियों को, उसका एक नुकसान है, वो जिस लड़के से बात कर रही है ना, वो मंगेतर समझ के कर रही है, वो शौहर समझ के नहीं कर रही, और मंगेतर और शौहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप सोचें मंगेतर फूलों का एक बकेट लेके आ जाए तो क्या हाल होगा, कि फूल पेश किए, हाँ कितना अच्छा लगा, और अगर आपका शौहर रोज़ आपके लिए कोई 200 करोन का फूलों का बकेट लेके आए, आपका हाल क्या होगा? आप कहेंगे क्या ज़रूरत है इस फजूल खर्ची की, हाँ आप सोचें ज़रा, इस बात प्रैक्टिकल लाइफ से फ़र्क है ना। वो चीज़ अब आप अगर जब शादी नहीं हुई तो तब तो आंखें खू और चेहरा और बातें और ये बड़ा अच्छा लगता है, क्या कभी शादीशुदा जोड़ा भी बैठ के एक दूसरे की आंखों की तारीफें करता? आप में से कोई शादीशुदा अपना बता दे, आखिरी दफा कब आपके मियाँ ने आंखों की तारीफ की? वो तो कहेंगे आंखें झुका के बात किया करो, हैं? पहले खुलवाते हैं फिर झुकाते हैं, तो बहुत फर्क होता है। जितना आप देखिए कि इजाजतें पहले ज्यादा मिल गई, उतना तलाकों का रेशो ज्यादा हो गया। फिल्मों ने और सोने पे सुहागा कर दिया। फिल्मी किरदार नहीं, ये हकीकी जिंदगी के किरदार हैं। और याद रखिए, शादी सिर्फ लुत्फ के लिए नहीं, अगर मिल गया तो ठीक है, बात हो गई, अच्छी बात है। असल मोहब्बत जो पैदा होती है, वो शादी के बाद पैदा होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो अजनबियों के बीच में निकाह से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं है जो मोहब्बत पैदा करे, और आप इसको अपने दिलों से महसूस करें। जितनी आपकी शादी पुरानी होती जाती है, उतनी शौहर के लिए दिल में मोहब्बत, मवद्दत और रहमत बढ़ती जाती है। तो बच्चों को इस आजमाइश में ना डालें। अगर मंगनी है बहुत अच्छी बात है, बस छठ मंगनी, पट ब्याह, निकाह कर दें, शादी कर दें। बस दफ़ा इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि कई कई साल मंगनियाँ रखी जाती हैं और ख़राबियाँ शुरू हो जाती हैं। एक मंगनी जो टूटी, वो 7 साल मंगनी रहने के बाद शादी से पहले टूटी। क्या वजह हुई? इतनी लंबी मंगनी दुरुस्त नहीं हुई। बहरहाल, अब ये तो बात अलग है। तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ को ट्रेंड बना लिया। लड़कियाँ भी उस लड़की को बड़े रश्क से देखती हैं कि हाय, इसकी तो लव मैरिज हो रही है। अरेंज मैरिज को तो ऐसे समझते हैं कि जैसे जुल्म हो रहा है और नुकसान हो रहा है, हाँ, और ये फलां क्लिक नहीं कर रहा। और आप देखिए कि बाज़ लोग तो ये सोचते हैं, यानी नौसुबिल इतनी गलत चीज़ें सामने आती हैं कि बाज़ लड़के तो शादी के अगले ही दिन कहते हैं, नहीं कुछ मज़ा नहीं आया, इस लड़की ने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, ये तो मेरे मियार पे पूरी नहीं उतरी। इतने जल्दी फैसले होने लगते हैं। आप देखिए कि बहुत कुछ बंदा शौहर बीवी एक दूसरे से सीखते हैं, ज़िंदगी के साथ साथ सीखते सिखाते एक दूसरे को खुश रखते हैं और वक्त गुजर जाता है। लेकिन जब वक्त से पहले जज्बात में उबाल आ जाता है और इतने आप झटपटे हो गए, क्योंकि परवरिश का अंदाज़ ही वो हो गया ना, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बहुत सारे लोग घर में शेयर करते थे, सब्र था लड़कियों में भी लड़कों में। अब जब हर बंदे को अलग कमरा, अलग चीज़ें मिल गई, आज तो लोग छोड़ें कमरों की बातें तो की थी आपसे, उसको तो छोड़ दें, लोग आज टीवी नहीं शेयर कर पाते। कंप्यूटर पे बच्चों की लड़ाई होती है, वो कहता है ये चैनल चाहिए, वो कहता है ये चाहिए। अच्छा, माँ ये नहीं कहती कि उन बहन भाइयों को समझाए, वो कहती है अच्छा तुम्हें भी ला देते हैं, तुम अलग ही रहो, तुम कभी अलग जो मिलो ही ना। यानी हालात क्या हो गए कि हमने इतना ज़्यादा इस चीज़ को मजबूत कर लिया कि जिसके बाद फिर ये हालत बिगड़ गई। तो यहाँ अगर इस मौजू को हम यहाँ पे रखें कि मुत्तखिज़ात अख़दान किसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं है। मैं एक रिवायत ही पढ़ के सुनाना चाह रही थी, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि जब तक हमें हदीस समझ ना आए उस वक़्त तक बात नहीं समझ आती। सही बुखारी की रिवायत का खुलासा है, पूरी हदीस तो इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज में है, लेकिन सिर्फ़ ये छुपी दोस्ती को समझने के लिए ये बात इंशाल्लाह हम सबको फ़ायदा देगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अलऐनानु तज़नियानु वज़िनाहु मन नज़्र, आँखें भी जिना करती हैं और आँखों का जिना गैर महरम को शहवत की निगाह से देखना है। ये जो शहवत की निगाह, ये मैं आपके समझाने के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ टेक्स्ट को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी को देखना जो है बस उसी से जिना है। यानी जब कोई किसी को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो ये आँखों का जिना होता है। फिर इसके बाद आपने फरमाया कान भी जिना करते हैं, और कान का जिना जो है वो ऐसी बातों का सुनना है। ज़ुबान भी जिना करती है, और ज़ुबान का जिना जो है वो ऐसी शहवत की बातें करना है। हाथ पाँव भी जिना करते हैं, और हाथों का जिना छूना है। और कदम जिना करते हैं, यानी कदमों का जिना क्या है? चल के जाना। ये डेटिंग क्या है? मुलाकातें क्या हैं? ये पाँव का जिना है। फिर आपने फरमाया इन सारे कामों के बाद शर्मगा, यानी प्राइवेट पार्ट, या तो तस्दीक कर देती है या तकजीब कर देती है। यानी जिना का असल फेल बिलफेल होता है या नहीं होता, ये बात की बात है, लेकिन जिस्म का हर उस जो है ये जिना कर चुका होता है। ये सही बुखारी, सही मुस्लिम में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बात आती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने आप को हर बुराई से बचाने की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बड़ी कड़ी शर्त लगा दी कि इसमें कभी खैर नहीं। आप जाके देख लें, जिन माशरों ने इतनी आज़ादियाँ दी हुई हैं, वहाँ तलाक़ें ज़्यादा, वहाँ की फैमिलीज ब्रोकन, और जहाँ इस्लाम की हदों के अंदर रहते हुए घराने थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कैसी भी जगह शादी हो जाती थी, गुजारा हो जाता था। फिर फरमाया फ़ाइज़ा उहसिन्ना, अब देखिए शादी हो गई है। यहाँ अपनी समझ के लिए एक डाउन एरो खींचें और लिख लें, अब सारी शरायत पूरी हुई, शादी हो गई। किससे हो रही है? यहाँ लौंडी से, और आम हालात में आम आज़ाद औरत से भी हो जाए। फ़ैन अतई नबी फ़ाहिशतन, अब अगर वो लौंडियाँ फहाशी करें, फुहश काम करें, यानी बेदकारी करें, जैसे कि कोई आम औरत भी करती है, तो फ़अलैहिन्न निस्फ़ुमा अलल मुहसनात, तो उन औरतों पे आधी सज़ा है उसकी नस्बत जो आज़ाद औरतों की है। या मुहसना का लफ्ज़ किस माने में आ रहा है? आज़ाद औरत के माने में आ रहा है, मिनल अज़ाबी, अज़ाब में से। अब देखिए कि इस्लाम ने एक छोटी सी बात हमें पहले ही शुरू में बता दी थी कि जब कोई मर्द शादी के बाद जिना करता है तो उसकी सज़ा रजम है। सूरत नूर में उसकी मज़ीद तफसीलात हम देखेंगे। अब कोई लॉन्डी किसी की, किसी दूसरे की लॉन्डी किसी के निकाह में आती है और वो औरत कोई बेहयाई करे, तो इसकी सज़ा कितनी है? तो 50 कोड़े। वहाँ रजम है यानी स्टोनिंग टू डेथ है। और साथ अगर कंवारी औरत ने, मतलब कंवारा लड़का लड़की जिना करते हैं, तो उनकी सज़ा जो है वो 100 कोड़े हैं। तो इन दोनों सूरतों में लॉन्डी की सज़ा क्या है, इवन वो शादीशुदा भी है या नहीं है, दोनों सूरतों में 50 कोड़े हैं। क्यों? कि जहाँ हकूक कम मिले तो वहाँ सज़ा भी कम है। ये है ना इस्लाम का अदब, कि इस औरत को अगर कम मिल रहा है तो फिर इसके साथ साथ इसकी सज़ा भी कम है। फिर इसके बाद बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ अपने लिए पहले एक जुमला लिखें, फिर अगला हिस्सा समझेंगे। और ये आयत इतनी लंबी है कि अगर ये छोटे छोटे मैं पॉज ना आपको दिलवाऊं तो आप कभी समझ नहीं सकते। अब शादी हो गई, उसने उसकी बात भी कर दी कि अगर गलती उससे होती है तो उसकी क्या सज़ा है। अब जालिका, ये बात, क्या बात? नीचे लिखें, किसी की लौंडी से निकाह की इजाज़त। जो ऊपर बात चली थी ना, मुमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन, कि आम हालात में किसी मर्द को आज़ाद औरत से निकाह करना चाहिए। ये जो रुख्सत मिल रही है ना, किसी की लौंडी से निकाह की, ये किसके लिए है? ज़ालिक लिमन खशियल अनत मिनकुम, सिर्फ उस मर्द को इस बात की इजाज़त है जो अपने ऊपर बदकारी से डरे। ये लानत का लफ्ज़ नहीं बल्कि अनत है, और अनता कहते हैं गंदगी, बदकारी, बेहयाई के बारे में, कि जब कोई मर्द इस हद तक बेकाबू हो जाए कि उसको लगे कि अगर शादी नहीं होती तो मैं जिना में पड़ जाऊंगा, और आज़ाद औरत से शादी नहीं हो रही, बस इस औरत सूरत में ये रुख्सत है कि किसी की लौंडी से निकाह कर ले। क्यों? कि देखिए, बहरहाल लौंडी से निकाह करने में मसले पैदा होते हैं। वो एक ही मालिका मालिक को उसका और है, कल जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगे, तो कहा कि फिर उस सूरत में करो, और अगर ना हो तो वन तस्बिरो। बड़ा प्यारा नुस्खा दे दिया सारे लड़कियों और लड़कों को जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो रही, माँ बाप नहीं मान रहे, या रिश्ते नहीं आ रहे, या कोई और मसला है, शादी नहीं हो रही तो क्या करो? वन तस्बिरो, सब्र ही कर लो। ये क्या सब्र है? नफ्स को रोक लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या माशरु शबाब, ए जवानों के गिरोह, तुम में से जिसको कुदरत हो वो निकाह कर ले शादी, मत देर करिए, मत फितनों में डालें अपने आप को, कर लो। और अगर नहीं कर सकते तो रोज़ा रखो, क्योंकि रोज़ा रखना शहवत को दबा देता है और आंखों को झुका देता है। ये है इलाज हर उस लड़की और लड़के के लिए जिसकी किसी वजह से शादी नहीं हो रही, वो क्या है कि वो रोज़े रखना शुरू कर दे और निगाहें झुकाए, मत देखे वो गंदी चीज़ें जिससे जज्बात में उबाल आए, मत पढ़े वो चीज़ें जिससे जज्बात उभरें, मत देखे वो चीज़ें, मत ऐसी गंदी बातें करे, और मैरिड कपल्स से खत्तुल वसा दूर रहे। जब लड़के लड़कियां ऐसे लोगों के करीब होते हैं, मसलन शादी हुई, दो चार दोस्तें थी, अब एक लड़की की शादी हो गई है, दोस्तों में एक थी उसकी, वक्त से पहले यानी 16-17 में शादी हो गई, बाकी अभी 17-18-20 की बैठी हुई हैं। तो कोशिश कीजिए आप खुद भी, लेकिन लड़कियां आपकी तो नहीं मानेंगी, लड़कियों को खुद पता होगा कि जिस लड़की की शादी हो गई है ना, तो कंवारी लड़कियां उससे ताल्लुक कम कर दें, वरना बहुत फितने पैदा होते हैं। वो एक लड़की जो अपनी शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही है, अब दोस्ती में तो सारी बातें होंगी, वो इन दोस्तियों से करेगी, अब इनका और दिल जलेगा, और कुड़ेंगी, हाय, फिर कॉम्प्लेक्स शुरू होगा, फुलां की तो इतनी जल्दी हो गई। तो कोशिश करें वो लड़की जिसकी अब शादी हो गई है, वो उनसे दोस्ती करे जो उसके कहले पर की, अपने मियाँ के दोस्तों की बीवियों से दोस्ती कर ले, बातचीत करे, और इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। और इसी से एक इशारा ये भी मिल जाता है कि शौहर और बीवी की जो खुफिया बातें होती हैं उसको किसी दूसरे से जिक्र नहीं करना चाहिए। आपने मर्दों को भी सख्ती से मना किया कि अपनी बीवी की कोई बात जो तुम्हें मालूम होती है अपने दोस्तों से ना करो, और इसी तरह बीवियां जो हैं वो भी ना करें। हमारे यहाँ हाल क्या है कि शादी के बाद बेहयाई के नाम पे कह लें या बेतकल्फी के नाम पे कह लें, एक एक लड़के लड़की के पास बैठ बैठ के पूछ रहा होता है क्या मामलात हैं और किस तरह की कहानी है। देखिए, जिस मुआशरे में सेक्स को इतना अहम समझ लिया जाता है, फिर वहाँ काम कहाँ होगा? हमारी दुकानें तो 11 बजे खुलती हैं, काम कहाँ होगा? आधा वक्त तो हम साल में छुट्टियों पे होते हैं, तो बामकसद लोग जो होते हैं वो तो फिर हज़रत हंजला जैसे होते हैं कि वो ऐसे नाजुक लम्हों में भी अल्लाह के नबी की पुकार पे निकल पड़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तस्बिरु खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। यही सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर जहाँ उसके दिल में ख्वाहिश आती है वो उसको पूरा करने की फिक्र में रहता है, इंसान को कभी भूख लगेगी फिर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप बताइए, क्या हमेशा आप जब खाना मांगे या भूखे तो खाना मिल जाता है? तो अब जिसको खाना नहीं मिल रहा वो ये कह दे कि मेरे लिए चोरी करके खाना जायज़ है? नहीं जायज़ ना। तो इसमें उस उन सब लोगों के सवाल का जवाब है जो कहते हैं नहीं हो रही शादी तो अब मजबूर है। बाद लोग खुद अपनी मर्जी से चूज करते हैं बाहर के मुल्कों में रहना, बीवियों को 6 6 7 7 8 साल से बाहर छोड़ा होता है, वो बेचारी आपके ससुराल आपके माँ बाप की भी खिदमत करें आपके बच्चों को भी पालें, और आप यहाँ आके अब ये फतवा ले लेते हैं जी हम बाहर रह रहे हैं हमसे सब्र नहीं हो रहा तो लिहाजा हम फिर ऐसी औरतों के साथ ताल्लुक़ रख लें और वट एवर वक्ती तौर पर शादियाँ करें। अल्लाह को सबका पता है, वल्लाहु गफूर रहीम। इन सारी बातों को सुनने से पहले जो हो चुका बस फिर अल्लाह पे डाल दो, वो माफ़ कर देगा। किसी की पिछली ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला हो गया किसी एक लफ्ज़ से भी कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे मामला डाल दिया जाए, अल्लाह ताला उस मामले को बेहतरीन तरीके से करता है। अब देखिए कितने ज़्यादा निजी मामला थे ना, बिल्कुल आप समझ लें कि ज़ाती ज़िंदगी से इनका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला इन सारे मसाइल के बताने के बाद अब हमें एक असूली बात बता रहे हैं, और इसको अगर गौर से समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई बातें उनमें नहीं समझ आई तो वो समझ में आने लगेंगी। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला चाहता है कि बयान करे तुम्हारे वास्ते और चलाए तुमको पहलों के रास्ते पर और माफ़ कर दे तुमको, और अल्लाह ताला खूब इल्म वाला और हिकमत वाला है। और क्या चाहता है अल्लाह ताला? वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, और अल्लाह ताला इरादा करता है कि तुम पर मुतवज्जे हो। इसके बरक्स वह युरीदुल्लज़ीना यत्तबिउन शहवात, और इरादा करते हैं वो लोग जो ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं। क्या? कि अंतमीलू मैलन अजीमा, कि तुम झुक जाओ झुकना बहुत ज़्यादा। तीसरा इरादा अल्लाह का क्या है? युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अनकुम व खुलिकल इंसानु दईफा, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे बोझ को हल्का कर दे और इंसान कमज़ोर बनाया गया। इन तीन आयात में ऐसे लगता है कि पीछे वाली सारी बातों को अल्लाह ताला ने एक असूल की सूरत में हमारे सामने रख दिया, और वो क्या है कि जो अहकामात तुम्हें पीछे दिए गए बज़ाहर तुम्हें मुश्किल लगते हैं कठिन लगते हैं, और हकीकत है कि जिस मुआशरे में ये आयात नाजिल हो रही थी वहाँ पे इस हद तक इन चीज़ों की कसरत हो चुकी थी कि जब कुरान पाक में ये बातें आईं तो लोगों को मुश्किल लगी। और देखा जाए तो आज के दौर में भी ज़्यादा मुश्किल नमाज रोज़ा नहीं लगता इसी किस्म के अहकामात, ख़ास तौर पर जिसमें तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने की और माशरे के रस्म व रिवाज से हटके चलने की बात हो वो मुश्किल लगती है। तो अल्लाह ताला बड़े प्यार के साथ मोहब्बत के साथ बताते हैं कि गम क्यों करते हो। तीन दफ़ा ताकीद के तौर पर बता दिया कि देखो अल्लाह ने जिन अहकामात की पाबंदी तुम पर फ़र्ज़ की है तो ये कोई ऐसे ही नहीं कर दी, ये किसी डिक्टेटर की डिक्टेटरशिप नहीं, आमिर की आमिरियत नहीं कि बस हुक्म बना दिया और उसकी कोई वजह बताई नहीं, बल्कि ये तरीका तो शुरू से चल रहा है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम, नंबर एक, अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करना चाहता है, खोल खोल के बयान करना चाहता है। किस तरह अल्लाह ताला बयान करता है? लफ्जी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी। मतलब क्या है कि इस कुरान पाक में और हर दौर के नबियों के पास किताबों में अल्लाह ताला ने शरीयत के अहकामात को खोल खोल कर बयान कर दिया, और इन बातों को खोल के इसलिए भी रख दिया कि वह यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हें तुम्हारे पिछलों के तरीकों पे चलाए। अल्लाह ताला एहसास दिलाता है कि देखो कितनी तेज़ी से तुम अपने पिछले लोगों से मुख्तलिफ होते जा रहे हो। अंबिया कराम के वक्त को देख लें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेके आज तक के माहौल के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको देख लें, तो ये आयत बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि बावजूद इसके कि दीन की हर बात खुल के बयान कर दी, वाज़े कर दी, हदूद बता दी, शराइत लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ज़रा देखो कि लोग कहाँ चल रहे हैं। वो उन रास्तों पे चलते हैं जो उनके रास्ते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह की बात को कहाँ मानेंगे। दरअसल यहाँ एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम के तर्ज़ ज़िंदगी का फ़र्क भी बता दिया गया कि एक तरफ अल्लाह का दीन है जो पाबंदियों का दीन लगता है, एक तरफ अल्लाह का कानून है और दूसरी तरफ लोगों की ख्वाहिशात का दीन है। इसीलिए लोग अल्लाह के दीन को पाबंदियों का दीन समझ के इसके करीब नहीं आते, उनको लज्जत अच्छी लगती है। हालांकि अल्लाह ताला तो तुम्हें पाक करना चाहता है, वो तुम्हें तुम्हारे पिछलों से जोड़ना चाहता है और तुमने पिछली ज़िंदगी में जो किया वो तुमको माफ़ करना चाहता है। अल्लाह का इरादा तो तौबा करवाने का इरादा है, तुम्हें माफ़ करने का इरादा है, और वो इल्म और हिकमत वाला है। उसने जितने भी कानून बनाए, माँ बाप को ये अच्छे लगें या बच्चों को अच्छे लगें या ना लगें, अल्लाह ने ये बातें इल्म की बुनियाद पे की हैं और अल्लाह का इल्म पुख्ता है। अल्लाह का जो इल्म है वो किसी और का इल्म हो ही नहीं सकता, और अल्लाह की ज़ात जो है वो लोगों को इस बात पे माइल करती है कि देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अहकाम देता नहीं बल्कि उसकी हिकमतें भी बताता हूँ, तो तुम अपने आप को इन अहकाम के साथ जोड़ के रखो। वल्लाहु युरीदु, और अल्लाह इरादा करता है क्या, अय्यतूबा अलैकुम, तुम्हें खोल खोल के बयान कर दे, तुम पे तुम्हें मुतवज्जो करे। देखिए पहले भी तौबा की बात हुई, यतूबा अलैकुम, फिर दोबारा यतूबा अलैकुम, क्यों कि शिद्दत बड़ी है ना। इन मौजूआत पे तौबा करना और करवाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं देखो मेरा ये इरादा है, अब तुम्हारा पता नहीं क्या इरादा है। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बातें खोल खोल के बयान कर दी, इसके बावजूद भी क्यों आज के मुसलमानों को दीन की समझ नहीं आती। आप एक दीन वो देखते हैं जो इस कुरान पाक की सूरत में इस क्लासरूम में बैठ के आपको समझ आता है, और एक दीन वो है जो दुनिया में फैला हुआ है लोगों के अमल के तौर पे, रवैयों के सूरत में। आखिर दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? तो इसकी पहली वजह तो यह है कि लोगों ने इल्म लिया कहाँ, सिर्फ आयतों को पढ़ा और पढ़ पढ़ के उनके अजर को नोट किया, लेकिन असल इल्म जिससे बात समझ आनी थी वो लिया ही नहीं। फिर दूसरी वजह क्या हुई कि समझ की कमी है। जब अकल पर ख्वाहिशात का गलबा आता है ना तो समझ चली जाती है। इस असूल को अपनी ज़िंदगी में हर जगह चेक कर लीजिए। बच्चे के दिल में जब आइसक्रीम खाने का जज्बा भरता है ना तो उस वक्त वो ये बात समझना ही नहीं चाहता कि ये आइसक्रीम खाना इसके गले को ख़राब करेगा, इसको ज़ुकाम हो जाएगा, इसका स्टमक अपसेट होगा या क्या होगा, नशा चढ़ा हुआ है ना। शराबी को देखें, जब शराब का नशा चढ़ता है या टूटता है तो उस वक़्त उसको याद रहता है कि ये शराब लंग्स को ख़राब कर देगी, नहीं करती ना। बिल्कुल यहाँ यही बात है कि जब ख्वाहिशात के अंदर इंसान आता है ना तो उसको फिर अल्लाह के हुक्म याद नहीं आते। इसीलिए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो युरीदुल्लज़ीना यत्तबिउन शहवात। ऐसे लग रहा है कि एक तरफ अल्लाह का इरादा है और एक तरफ ख्वाहिशात वाले लोगों का इरादा है। तो जब अकल पर ख्वाहिशों का गलबा होता है तो सीधे सीधे हुक्म भी नहीं समझ आते, फिर तावीलात का रास्ता खुलता है, आज का दौर और आज के हालात और ये मुल्क और वो मुल्क और इस तरह की बातें। फिर एक और भी वजह बातें ना समझ आने की, वो क्या है कि तलब की कमी है। कितनों ने कुरान को इस तलब के साथ सीखा कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। हम तो बरकत के लिए लेने आए थे, हम तो सवाब के लिए पढ़ने के आदी हैं, हम तो मुश्किलात में वजीफे के तौर पे पढ़ने के आदी हैं। तो जब नीयत दुरुस्त ना हो, तलब की कमी हो, समझ की कमी हो और इल्म का शौक ना हो तो याद रखिए कि फिर इल्म हासिल नहीं होता। और जब एक बंदा अल्लाह की किताब सीखने के लिए आता है तो उसको अपने दिल को इस बात के लिए जमाना पड़ता है कि मैं यहाँ अल्लाह के इरादों को समझने के लिए आया हूँ, और मुझे दुनिया के अंदर कोई एक रंग लगे तो लगे लेकिन मेरा रंग वही होगा जो रब का रंग होगा। और अल्लाह ताला यहाँ हमें उन तमाम बातिल सोच रखने वालों से भी आगाह करते हैं, उनसे केयरफुल रहने की दावत देते हैं कि जिनकी ख्वाहिश क्या है कि अंतमीलु मैलन अजीमा। वो सारे लोग, वो कौमें, वो मज़ाहिब जो शहवत के नाम पे, जिना के नाम पे, गलत को सही करने के दर पे हैं, उनकी बातों में मत आना, होशियार रहना। वो तुम्हें इस तरह से गुम कर देंगे इस सारी चीज़ों के अंदर कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हें अपना दीन बोझल लगेगा। आज किसी आम इंसान से पूछ के देखें दीन क्या, वो कहेंगे बड़ा मुश्किल है, पाबंदियाँ लगाता है, इस तरह है, वो है। तो उसकी वजह क्या है कि हमने दीन भी तो उनसे सीखा कि जिनको खुद भी इस्लाम अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि युरीदुल्लाहुयुखफ्फिफअनकुम, यहाँ ये आयत भी बड़ी काबिले गौर है, अल्लाह तुम्हारे बोझ हटाना चाहता है। ये पिछली जितनी बातें पढ़ी सुनी क्या उसमें कोई बोझ थे जो हटा रहे अल्लाह ताला? यकीनन है, आज रस्म व रिवाज के बोझ, लेन देन के बोझ, कहीं हमने चाओ के नाम पे बोझ, कहीं अरमानों के नाम पे बोझ डाले हुए कि नहीं डाले हुए। हमारी उतनी बिदात दीनी ज़िंदगी में नहीं है, नमाज, रोज़े, कुरान, हज, ज़कात के मौजू पे, जितनी बिदात हमारी शादियों में आ चुकी, जितनी हमारे जीने मरने के अंदाज में आने लगी, तो ये बोझ है ना। आप देखिए कि एक इंसान पे ये कितना बोझ है कि हर वक्त वो इसी फिक्र में रहे कि फलां शादी आ रही है और मैंने वहाँ क्या पहनना है, क्या देना है। और ख़ास तौर पे ये बोझ उन लोगों के लिए बहुत बोझल हो जाता है जो बेचारे सफ़ेद पोश होते हैं। एक दफ़ा एक खातून थी बड़ी उम्र की, तो उनसे बात हो रही थी तो बताने लगी ख़ानदान में बहुत शादियाँ आ रही हैं, और गिनवाने लगी फलां बहन की बेटी की शादी है, फलां भाई के बेटे की है। तो उनके अंदाज में बड़ी एक आह थी, तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा इसमें खुशी की बात है, दुख की बात क्या है? तो कहने लगी नहीं फिर लेन देन भी तो हर जगह करना पड़ेगा ना, एक को पूरा करेंगे तो दूसरों को देंगे, क्या ये बोझ नहीं है? अल्लाह तो कहता है तुम हल्के फुल्के ज़िंदगी बसर करो, निकाह की ख्वाहिश है, अल्लाह के नबी के पास पहुंच जाते थे। अच्छा फलां औरत है ठीक है पूछो, 2-4 दिन में बात करके उसी महफिल में निकाह होता था और दूल्हा दुल्हन खुशी खुशी घर चले जाते थे। हमारे पहले फेरे नहीं ख़त्म होते, दूसरे नहीं ख़त्म होते, और सिर्फ ये नाम कहते हैं कि हमारी खुशी है। और यकीन करें बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये बच्चों की खुशी है, और उन मासूमों को बिल्कुल पता नहीं होता। ये अपनी खुशियाँ, अपने चाओ, अपने अरमान पूरे करने के लिए लड़की लड़के का नाम लगाते हैं उनके चाओ। उनको तो एक ही खुशी है कि उनकी शादी हो रही है, उनको दूसरी चीज़ों से केयर नहीं है कि आपने कितनी मिठाई बांटी, कितने मन मिठाई आई और क्या कुछ किया। तो कहा वखुली कल इंसान उदयफ़ा, तुम कमज़ोर हो मान जाओ, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए अपने कंधों पे उतना बोझ लो जिसको तुम बर्दाश्त कर सको। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर शहवत का मादा रखा है, कमज़ोरी भी है तुम्हारी ये, लेकिन तुम अपने आप को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक लेके चलोगे तो अल्लाह ताला खुद बहुत तुम्हें ताकत देगा। देखिए इंसान अपनी असल के एतबार से बड़ा कमज़ोर है, लेकिन एक चीज़ है जो इंसान को ताकतवर करती है, और वो ईमान ताकत देता है। गुनाहों से बचने की ताकत ईमान से मिलती है, नेकियों को अपनाने की ताकत ईमान से मिलती है, मुआशरे के रस्मों रिवाज के खिलाफ चलने की ताकत इस अल्लाह ताला के हुक्म से ईमान से मिलती है। सारा खानदान एक डगर पे चला हुआ है, अल्लाह ताला एक बंदे को ईमान में इतना पुख्ता कर देता है कि वो कहता नहीं मैं अपने बच्चों की शादियां सादगी से करूंगा, मेरे बच्चों की शादी में कोई खुराफात नहीं होंगी। अब ये बात है तो बड़ी छोटी सी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बन जाती है जो मुआशरे का गुलाम होता है, लेकिन जिसका ईमान जिंदा है वो करके दिखाता है। तो इस वक्त अगर वाकई इस्लाम को ज़रूरत है ना, तो हमारी तकरीरों से ज़्यादा हमारे अमल की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका दीन से ताल्लुक़ जुड़ जाता है, सीखने सिखाने वाले बन जाते हैं, फिर उनको अपनी अमली ज़िंदगी में ये सब ला के दिखाना पड़ेगा। ये बहुत आसान है, और जो ये बरकतें हैं ज़िंदगी में वो बहुत हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे क्या टॉपिक थे और आखिर में ये आते हैं, कितनी बामानी आते हैं ना कि क्यों अपनी जान निकाल रहे हो। आज कितनी लड़कियां सिर्फ इसलिए बैठी हुई हैं घरों में कि माँ बाप वो सारे काम नहीं कर सकते जो दूसरों के होते हैं। अब एक बेटे की माँ जो किसी की शादी खा के आ जाती है, उसका तो मैार और ऊंचा हो जाता है, वो कहती है अच्छा शुक्र है अभी मेरे बेटे की होनी है, मैं ज़रा इससे ऊपर जाऊँगी। और फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि जो भी मुआशरे में बुराई हैं, आप में से कोई भी इस मौजू पर जो बात हो रही थी बात करना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई बात जो आप शेयर करना चाहें या सवाल पूछना चाहें। जी इनका सवाल है कि आज के दौर में चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, और दूसरी बात है कि हम इस्लामी मुल्कों से बाहर जब रहते हैं तो कानून तो कभी भी किसी को नहीं पकड़ सकता, तो अब अगर बाप सिर्फ इस बुनियाद पे कि रस्मों रिवाज के नाम पे वो बेटी की शादी कहीं और ना होने दे, तो उस औरत के लिए या उस लड़की के लिए क्या हुक्म है? और इसी से मिलते जुलते आप बहुत सारे और मसाइल सोच सकते हैं। बाप कहते हैं बिरादरी में करनी है, या बाप कहते हैं कि ख़ानदान में करनी है, या कोई बेदीन से करनी है। तो आप देखिए ऐसे मौक़ों को इस मसले से इधर और उधर लेके सोचें। हमारा मसला क्या है कि जब कोई मसला पेश आ जाता है ना, तो हम उस वक्त बस उसके सर पे खड़े होकर उसको कहते हैं इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। यहाँ ये मसला ठीक करने से ज़्यादा ये सोचना है उस लड़की को कि मेरे बाप की ये सोच क्यों है, पहली बात। दूसरी बात उस लड़की को ये सोचना है कि मेरी सोच कैसे बदल गई, मैं भी तो उसी माँ बाप के घर में रहती थी ना। यकीनन जो बात बीच में आएगी वो दीन से कुर्बत की होगी, इस्लाम की होगी, कुरान पढ़ लिया, इल्म सीख लिया, बच्चियों को पहले मौका मिल गया, बच्चों को मिल गया, बूढ़े माँ बाप को नहीं मिला या उन्होंने इसकी अहमियत नहीं महसूस की। ऐसा बाप जो इस बात को लेके आता है ना, मैं कहती हूँ कि ये ना लड़ाई का मौका है ना झगड़े का है, ये बाप के गले में प्यार से बाहें डाल के फूट फूट के रोने का मौका है। वो बात जो आप अपने लफ्जों से नहीं बता सकते ना, वो अपने खामोश जज्बों से बता सकते हैं। बाप बेटी का बिलकना समझेगा ना, जब बेटी तड़पेगी ना तो बाप की अंतड़ियों को हाथ पड़ेगा कि अल्लाह ये मेरी बच्ची इसको इतना सीरियस ले रही है। मत हर बात को अदालतों में लेके जाएं, मत झगड़ों में ले जाएं, मत दूसरों पे ले जाएं। अगर वाकई सगा बाप और सगी बेटी है ना, तो वो बेटी अपने प्यार से, अपने जज्बात से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाप को बता सकती है, अबू मैंने जिंदगी गुजारनी है, अबू ये, और साथ उसकी दिलसोजी का इंतजाम किया जाए। इस मौजू में बाप को कोई शुबह, बेटी इख्तमाम कर सकती है, बाप कोई बेटा है वो कर सकता है, किसी ऐसे दीनदार से बैठें, सिटिंग कराएं, उनके आफ्टर इफेक्ट्स बताए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से मिसालें ली जा सकती हैं। हमारा मसला पता है कि हम गुस्से में आ जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और हमारी बात बाहर निकल जाती है। जिस बंदे ने अपने मामले को बाहर निकाल दिया ना, वो कभी इज्जत नहीं पा सकेगा। मिसाल अब ये घर का मामला है ना, बाप बेटी का मामला घर में सॉल्व हो जाए, बेटी लाड करे, प्यार करे। मैं कहती हूँ कि बेटियों में तो इतनी ताकत होती है क्योंकि वो बापों की कमजोरियां होती हैं। माँ वो बात नहीं मान सकती जो बाप मान लेते हैं, आप भी इस बात का मुशाहिदा करते होंगे, इल्ला माशाल्लाह कभी ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है अक्सर, जहाँ बाप बात मनवानी होती है ना, बेटियां बाप के पास पहुंच जाती हैं, माँ ऑपोजिट होती हैं, बाप मनवा रहे हैं, प्यार से मनवाए ये बच्ची। और अगर बाप कहते हैं ना कि नहीं मैंने वही करना, फिर सब्र शुक्र से रोजे रख के बैठ जाए, फिर ना करे शादी, वेट करे, आप वक्त का इंतजार करें। देखिए मैं हैरान होती हूँ कि शैतान जो है बाज दफा हमें इतना क्या कहना चाहिए, एक्साइटेड को, यानी बहुत जज्बाती कर देता है कि जो चीज़ हमारे हाथ में होती है ना वो भी चली जाती है। मिसाल दूंगी कि एक शख्स, उसको बहुत भूख लगी ना, आप घर जाते हैं यहाँ से बिलफर्ज, आप कई सुबह से कई घंटे बैठे हैं या आपने सीखा पढ़ा, घर गए, अब घर गए खाने को कुछ नहीं, भूख लगी हुई है ना, खाना नहीं है, या आपने जिसको कहा था खाना पकाओ वो खाना नहीं पका चुका, कोई भी वजह हो सकती है, क्या करें? दो तरीके ना, बोले शोर मचाएं, घर में तो खाना ही नहीं पकता, पढ़ के आते हैं अब काम करने शुरू हो गए, दिस एंड दैट, भूख लगी हुई थी ना वो भी मर गई गुस्से में। अब जो बंदा घर से सुबह से वैसे ही इस गुस्से में था कि आप घर से गायब हैं, और ही तकलीफ हुई, लड़ाई हुई। तरीका क्या है कि हल सोचो, फ्रिज में कुछ है पड़ा हुआ, रोटी तो है ना, अचार है ना, दही है, दूध, बैठो खा लो, आओ बैठो भाई, खाते हैं मिलके, फिर आगे चले, कुछ और जो बनाना वो बाद में बनाए। मसाइल का हल कौन ढूंढता है? जो ठंडे सुबह का होता है। एनालिसिस कीजिए, क्यों बाप नहीं मान रहे, कोई ज़रूर ऐसी इनकी अंदर बात होगी जो इनके दिल में जमी हुई है, उस मौजू को कुरे दें। आपको होता है कि साइकाट्रिस्ट यही करते हैं, कोई बंदा उनके पास इस तरह मारा हुआ जाया जाता है कि उसको बिल्कुल जीने की तमन्ना नहीं, वो उससे कहते तुम बातें करो, फिर वो खुद ही बातें करते, ये हुआ वो कहेंगे, अच्छा कोई वाक्य सुनाओ, अच्छा कभी माजी में ऐसा हुआ था, वो सारा उसका अंदर खोल के रख लेते हैं। तो उनको तजुर्बे और मुशाहदे से, तालीम से पता चल जाता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है, इसका मसला क्या है, बस वो वहीं जाके हमला करते हैं और अल्लाह की तौफीक से बात ठीक होती है। किसी जगह बिगाड़ देखें तो पहले उस मसले को पहुंचे, असल खराबी कहाँ फैली हुई है, तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और एक बात ऐसी, सारी बच्चियां याद रखें, असान तक रहू शैयन व हुवा खैरुल्लक को, ये मैं पूरे शऊर से कह रही हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं हो सकता है जिस चीज़ को तुम तक मकरू समझ रहे हो, ना पसंद कर रहे हो, उसमें अल्लाह ने कितनी खैर रखी है। शादी 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 हो गई, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? पाबंदियाँ पाबंदियाँ, जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ, चार का चेहरा देख के घर से निकलो, चार का रुख देखो सुबह उठते ही, चार को खुश करने की कोशिश करो, आप हर चीज़ से खैर लें, शादी नहीं हुई अल्लाह का शुक्र है, वक्त बहुत है। माँ बाप तो लाड ही देखते हैं, काम कर लें कर लें, ना करें हंस के दिखा दें, प्यार कर लें, आप जरा जरा सर बना के देखें दर्द वाला, माँ बजाय इसके कि ये कहना है कि काम नहीं किया, वो आपके लिए चाय बना के गोली ले आएगी, अपने हाथ भी रखेगी, आप इस वक्त का शुक्र करें। क्या शादी हर खुशी की दलील है? हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ने दी, सब्र सोचे अल्लाह क्यों मुझे नहीं करवा रहा, अल्लाह मुझसे कुछ और कराना चाहता है। हमारा हाल क्या होता है? बच्चा नहीं हुआ, मिसाल दूसरी दे देती हूँ, बच्चा नहीं है भाई, किसी के पास बच्चा नहीं है, अब एक हम क्या, बच्चा नहीं बच्चा नहीं, हाय बच्चा हाय बच्चा, ऐसे बंदे का वो बच्चा जो है ना उसका आइडियल बन चुका था, बल्कि आइडल बन जाता है। वो समझते हैं दुनिया में खुश होने का एक ही राज है कि बच्चा गोद में आ जाए, आके तो देखे फिर जरा, फिर कहेंगे हाय रात को सोने नहीं देता, हाय नींद नहीं पूरी होती, हाय फोकस नहीं होता, अब क्या मसले हो गए, दूसरी तरफ चल पड़े। अल्लाह का शुक्र करें अल्लाह बड़ी को छोटा करके ला रहा है। और खुदा ना खास्ता एक और चीज़ भी हो सकती है, शादी हो के टूट चुकी होती है इस उम्र में, बस लोग एक ये खौफ देते हैं इस उम्र में तो अब सब की शादियां हो चुकी होती हैं, भाई फलां की हो गई, अब ये लड़की इतनी बड़ी हो गई, तो वो ये भी तो सोचे कि इस उम्र में कितनी जाके वापस भी आ चुकी होती हैं, आपको क्या पता कि अल्लाह ताला ने आपको कितने बड़े सदमे से महफूज रखा हुआ है। तो बस अल्लाह पे राजी रहें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें खैर कर देगा। जी प्लीज़। जी इनका बहुत अहम सवाल है कि अगर शादी हो गई, अब हो चुकी है, बाप उस वक्त राज़ी नहीं थे। देखिए असल चीज़ जो है ना वो बाप की रजामंदी है। मिसाल है, एक लड़की है, उसकी शादी का मौका है, बाप वहाँ नहीं रहता, बाप रहता है किसी दूसरे मुल्क में, शादी हो रही है किसी तीसरे मुल्क में, तो बाप कह देते हैं ना बेटे को कि तुम वली बन जाओ, तो वो बाप की ही जिम्मेदारी होती है। वो एक ऐसी है जैसे किसी को अपना नॉमिनेट कर देना या वकालत कर देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सुन लीजिए, ये बड़ी कड़वी बात है जो अभी कहने लगी हूँ, कि खुदा न खास्ता बास ऐसी शादियाँ हो चुकी हैं कि बाप राज़ी नहीं थे, माँ ने मिल मिला के घर वालों से कर दी, अब क्या करें, बच्चा भी हो गया, तो अब जूँ ही बाप राज़ी होगा। मैंने ये मसला खुद किसी का फर्स्ट हैंड पूछवाया गया था, और मैंने एक बहुत अच्छे आलिम है उनसे ये बात खुद पूछवाई, तो उन्होंने बताया कि अब जूँ ही बाप सही होता है फिर दोबारा निकाह होगा उसी पर, यानी उसी लड़के से होगा निकाह होगा, पहले को छोड़ दें इल्ला मा कद सलफ, लेकिन फिर निकाह उनसे होगा। ठीक है, और कर देना चाहिए ऐसा फिर निकाह। जी देखिए, जो ऐसे निकाह जिसमें लड़कियां खुद घर से जा के शादी कर लेती हैं, बच्चा हो जाता है, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इसका सबसे सेफ हल यही है कि उसी लड़के से लड़की का निकाह हो जाए, शादी हो जाए, बाप नहीं राज़ी था अब हो जाए राज़ी, अब बाप छोड़ दे अपनी अना को, बाद जिद भी तो हो जाती है ना, फिर ऐसे पापों को जिद नहीं करनी चाहिए। जहाँ देखे ना क्या बच्ची इस हद तक बढ़ गई है कि इसने करनी इधर और ये गुनाहगार होगी, तो फिर बाप को कर देनी चाहिए ताकि वो गुनाहगार ना हो, और फिर अगर चलो नहीं होगा तो तलाक लेके आ जाएगी, उससे तो बेहतर है ना कि गुनाह की ज़िंदगी बसर करे, तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए अब हम तिलावत सुनेंगे इस लेसन की।
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا